देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत कुछ आता है, वो आपका पर्सनालिटी भी डिफरेंट हो सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो आपके इमोशंस इमोशनल एस्पेक्ट भी डिफरेंट हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ भी डिफरेंट हो सकती है, बहुत कुछ. लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इंटेलिजेंस की, कि हाउ डू पीपल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस. एंड बेसिकली द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम इज टू नो दैट वॉट actually intelligence is, how do we do the intelligence testing and how do people differ, और हम how do we define intelligence as well.
जी
तो वही हम आज basically बात करने वाले हैं कि intelligence क्या है. अगर मैं इंटेलिजेंस का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दूँ तो यू माइट हैव नोटिस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल अराउंड यू. अगर आप देखेंगे तो आपको इमिडिएटली ये पता चल जाएगा कि लोग एक दूसरे से बहुत सारी तरह में भिन्न होते हैं. जैसे मैंने कहा कि वो किसी भी तरह से भिन्न हो सकते हैं, वो अपने बॉडी कलर में भी हो सकते हैं, स्किन कलर में भी हो सकते हैं, हाइट, वेट, पर्सनैलिटी, एनीथिंग वो डिफर करता है. और जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे मैं बात करी थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की कैसी है या सोशल इंटेलिजेंस, कुछ भी हो सकता है. हम अपनी एवरीडे लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग डिफर करते हैं अपने मोटिवेशन लेवल में. कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं लाइफ के लिए और कुछ लोगों में उतना मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. कुछ लोग जो होते हैं उनका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है, कुछ का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, कुछ का चीज़ों को देखने का नज़रिया पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. तो दैट मीन्स लोग बहुत सारी चीज़ों में डिफर करते हैं. अगर मैं इन्हीं लोगों के बारे में, जो हम इनको समझना चाहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फील्ड क्या है? साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में ही हम बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड है, और उसमें हम इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप ये देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस को, जैसे किसी की इंटेलिजेंस को असेस करना है, या पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, या कुछ भी एट्रीब्यूट्स को हमें अगर असेस करना है, मापना है, तो उसके लिए बहुत अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं वो आजकल प्रैक्टिस में आ रहे हैं. और आपने देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने बच्चों के बारे में. तो बच्चे जब भी कहीं पर भी पढ़ना शुरू करते हैं, इनिशियल क्लासेस में जाते हैं, वैसे तो स्कूल काउंसलर सब जगह होते हैं, बट इनिशियल क्लासेस में जाते हैं या फिर कहीं टेंथ के बाद अपने या ट्वेल्थ के बाद कहीं करियर चूज करना चाहते हैं, तो लोग उन्हें टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, दी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, तो ताकि उन्हें एक सही एक अपना वो मिल सके कि अगर हमारा एप्टीट्यूड ऐसा है, हम ऐसे हैं, हमारा इंटरेस्ट लेवल ऐसा है, तो किस तरह के कोर्सेज को हमें सिलेक्ट
ज्वाइन करना चाहिए ताकि सक्सेसफुली करियर
हमारा सक्सेसफुली हम कर सके हमारे इंटेलिजेंस के बेसिस पे और हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे. उसी तरह से बहुत सारे जो हमारी जो डिफरेंट जॉब्स में हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है. और हम लोगों ने ये जो टर्म, आपने जब हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, आपने IQ विच इज इंटेलिजेंस कोशेंट, हम बहुत बार इसकी बात करते हैं कि ये क्या है. ये एक्चुअली कॉमन वर्ड बन गया है और हर कोई जानना चाहता है कि उनका IQ क्या है या उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि वो उनका IQ और उनकी पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो उन्हें कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन दे सकती है टूवर्ड्स लीडिंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और आज हम लोग इसी बात पे एम कर रहे हैं कि हम लोग ये समझ पाए कि इंटेलिजेंस एक्चुअली में क्या है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या है, किस तरह से हम इंटेलिजेंस डिफाइन कर सकते हैं और क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं. देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है. ठीक है, अगर मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करूँ तो उसका मतलब है जो भी टेस्टिंग हम लोग, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी, अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स में कोई टेस्ट करते हैं तो उसको आप एक स्केल से मापते हैं. ठीक है, उसी वो स्केल्स जो होते हैं यूनिट्स के स्केल्स होते हैं. लेकिन जब आप सोशल साइंसेस में, या स्पेशली मैं साइकोलॉजी की बात करूं, किसी भी चीज़ को समझते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट. उनके अपने डिफाइंड स्केल्स होते हैं, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल का IQ कितना है या उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो इनको डिफाइन करने के लिए भी साइकोलॉजी में अलग अलग स्केल्स बने हैं. और जब भी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या मापने की कोशिश करते हैं तो उसका उसे हम कहते हैं कि वी आर गोइंग फॉर अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अगर कोई बच्चे भी कभी अपने सेकेंडरी क्लासेस के बाद या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के बाद किसी गाइडेंस काउंसलिंग वाले के पास जाएंगे और वहाँ पे वो अपनी क्षमताओं को जानना चाहेंगे सो दैट दे चूज द एप्रोप्रिएट कोर्स फॉर देमसेल्व्स, तो उसे कहेंगे कि दे आर गोइंग फॉर अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट।
और ये उम्र के किसी भी पड़ाव पे किया जा सकता है,
किसी भी पड़ाव पे किया जा सकता
है। और रिजल्ट्स में आप क्या पाते हैं?
हाँ, इसमें ये अब इसी की हम विस्तार से बात करेंगे कि रिजल्ट्स, पहले हम ये टेस्ट डिजाइन कैसे करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि क्योंकि जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, देखिए जैसे हमें सामने नजर आता है कि फिजिक्स कोई भी साइंस सब्जेक्ट है कि उसमें इतना नंबर आया या इतना नंबर आया तो इसका ये मतलब होगा, लेकिन किसी को पर्सनालिटी को समझ पाने के लिए हम कैसे डिजाइन करते हैं ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ तो वही है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये होता है कि हम किस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू इंडिविजुअल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल किस कैटेगरी का है, मतलब इसकी पर्सनालिटी टाइप कैसा है, इसका इंटेलिजेंस कैसा है, एंड हाउ वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम दी अनदर इंडिविजुअल्स। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को जो फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफ अस डू व्हेन वी मेक जजमेंट सच एज नाइस है, समबडी इज नाइस, समबडी इज गुड, बैड, अट्रैक्टिव, अगली, इडियट, थोड़ी इस तरह से की जाती हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जो साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है ये ट्राई करती है कि जो भी प्रोसीजर्स हम अपनाएं उनको हम सिस्टमेटाइज कर दें। क्योंकि जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी तो दैट मींस हमने साइंटिफिकली चीज़ों को बनाने की कोशिश करी है। अब अगर क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात कर रही हूँ तो साइकोलॉजिस्ट जो ऑफन ये प्रोसीजर्स हैं उनको कहते हैं टेस्ट करने के कि किसी इंडिविजुअल को हम कैसे समझ पाते हैं, उन्हें वो कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब उसका डेफिनेशन एक किस तरह से आता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक used to generate a carefully selected sample of behavior, मतलब psychological test एक structured technique है। structured technique मतलब सोच समझ के बनाया गया और उसके अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि मापने की अपनी एक scientifically हमने बनाया है,
scientific procedure है,
scientific procedure से हमने structure किया है। और ये technique जो है वो हम किस लिए use करते हैं कि हम carefully select करते हैं sample of behavior। sample of behavior होता है कि हम लोग उसमें intelligence भी देख सकते हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी दे सकते हैं, आपका सोशल लाइफ भी दे सकते हैं, कुछ भी, आपका बिहेवियर कैसा है। तो जिस भी तरह से हम इन्हें मेजर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करते हैं, तो वो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से करते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक टू मेजर अ केयरफुली डिजाइन इज अ केयरफुली डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निक टू मेजर अ सैंपल ऑफ बिहेवियर, कुछ भी सैंपल ऑफ बिहेवियर ले सकते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमने इस टेक्निक से कोई भी इन्फ्रेंस पे आना है कि कोई इंडिविजुअल एक एक कंक्लूजन पे हमें आना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट है, अब जैसे आप बोल रहे थे कि मैम इसमें क्या क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या साइंटिफिक चीज़ें यूज़ की हैं, तो कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो टर्म्स हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जो हमारा लेसन नंबर 2 है जब हम उसमें बात करते हैं कि हाउ साइकोलॉजिस्ट स्टडी, तो उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। हम दोबारा उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट की हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट नंबर 1 रिलायबल हो, नंबर 2 वैलिड हो और नंबर 3 स्टैंडर्डाइज्ड हो। अब लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स विच इज़ रिलायबल, वैलिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम टेस्ट को कब कहते हैं कि वो रिलायबल है। आपने मुझसे एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ओकेजन पे हमने टेस्ट किया तो फिर दोबारा उसको टेस्ट करेंगे तो किस तरह का इंडिविजुअल का पर्सनालिटी निकलेगा, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसे कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। पर उसमें डिफाइन कर उसमें ये मैटर करता है कि आपने बीच में उस इंडिविजुअल को क्या ट्रेनिंग दी है।
जी, समझ और अगर ट्रेनिंग नहीं दी,
ट्रेनिंग नहीं दी है तब अगर उसका लेवल सेम है तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इंडिविजुअल का नेचर और बेसिक इंटेलिजेंस तो सेम रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा ऊंच नीच का डिफरेंस आता है तो वो बिल्कुल सही आपने कहा, सिचुएशनल डिफरेंसेस होते हैं। वो सिचुएशनल डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि
उसे एक महीने में उसने न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दिया,
नहीं वो तो ये हो गया कि उसने अपनी नॉलेज इनहेंस कर दी, वो काइंड ऑफ ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। लेकिन बिना कुछ किए अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं तो वो सिचुएशन की वजह से आते हैं। वो सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए जब आपने पहले टेस्ट दिया था तो आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे, तो आपने अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब आपके फिजिकली आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, मेंटली आप फ्री थे, ठीक है। लेकिन आप एक महीने बाद टेस्ट दे रहे हो, क्या पता आपके साथ क्या इमोशनल हैपनिंग हुई है, या आप आज के दिन किस वजह से थोड़े कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। तो मे बी ये थोड़े एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं, ये थोड़ा विस्तृत डिस्क्रिप्शन में चला जाता है, बट ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती है उसके लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। अब बैक टू आवर डिस्कशन, जब हम बात कर रहे थे जो आपने कहा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का यही मतलब होता है अ टेस्ट इज रिलायबल इफ इट मेजर्स समथिंग कंसिस्टेंटली। जो आपने कहा कि अगर मैंने आज बच्चे को IQ टेस्ट किया तो एक महीने बाद भी उसका रिजल्ट डिफर करेगा या वही आएगा, लेकिन टेस्ट वो है जो हमें ये बताएगा कि अगर मैंने आज जो टेस्ट किया है, जो आज रिजल्ट आया है, वही रिजल्ट जो है अगले 4 महीने बाद भी आएगा, मतलब provided there is no extra training that you are giving to. तो हमेशा आज से 6 महीने बाद भी आप टेस्ट करें तो वो एक जैसा है, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा कि ऐसा मैंने हमेशा क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि IQ का भी एक लेवल है इस एज में, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जैसे आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, बट एक IQ एक लेवल है जो कॉन्स्टेंट रहता है। वो अगर मैं आज टेस्ट कर रही हूँ तो मैं आज के अकॉर्डिंग, वो भी तो टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं,
जी बिल्कुल, उम्र के अकॉर्डिंग,
उम्र के, मैं 5 साल के बच्चे को कभी भी वो टेस्ट नहीं दूंगी जो 15 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो 5 साल के अकॉर्डिंगली उस बच्चे पे उस टाइम एप्लीकेबल है। जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, 10 साल का,
दूसरी तरह का टेस्ट,
लेकिन उसका IQ सेम ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि IQ का लेवल तो कभी चेंज नहीं होगा ना बच्चे का, वो तो सेम ही रहने वाला है। जब वो छोटा था तो छोटे वाले हमने उसको उस तरह की प्रॉब्लम्स दी उम्र के हिसाब से, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उम्र के हिसाब से हमने प्रॉब्लम्स दी। तो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट ये होता है कि जब भी कोई टेस्ट रिलायबल तब माना जाता है व्हेन इट मेजर्स समथिंग कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप असेस करते हैं समथिंग स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन सेपरेट ओकेजन शुड बी द सेम, जो मैंने आपको कहा कि अगर आप उसको आज टेस्ट कर रहे हैं या थोड़े टाइम बाद टेस्ट कर रहे हैं तो जो भी स्कोर्स आपके आएंगे, स्कोर्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए, ठीक है। और कभी कभी अगर थोड़े बहुत ऊंचे नीचे होते हैं तो मैंने कहा कि कुछ एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट की वजह से, वो लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है एक्सट्रीनियस वेरिएबल, क्या पता है शोर में आप काम कर रहे हैं या आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है, फिजिकल स्टेट सही नहीं है, तो डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा। अगर कोई भी स्केल 2 different values बताता है वाइल असेसिंग द सेम ऑब्जेक्ट ऑन 2 occasions, इट विल बी कॉल्ड अनरिलायबल। मतलब वो स्केल रिलायबल ही नहीं होगा अगर वो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट रिजल्ट्स की को बताता है, तो हम कहेंगे कि द टेस्ट इज अनरिलायबल। A test of intelligence can be called reliable only when a person scores high on both the occasions. ठीक है, मतलब जैसे भी high हो, low हो, जो भी उसने occasions पे जिस भी तरह से score किया है वो consistently एक ही तरह से score करेगा, then we will say that the test is a reliable test of intelligence या कुछ भी, ठीक है। नहीं देखिए, जब भी हम कोई टेस्ट को देते हैं इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, तो वो हम बनाएंगे ही तभी टेस्ट, उसके कुछ स्ट्रक्चर्ड फिनोमेना होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होते हैं कि आपने कौन कौन सी आइटम्स का मतलब होता है जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं ना टेस्ट में, उनको हम साइकोलॉजी की टर्म्स में कहते हैं कौन सी आइटम्स आपने उसमें रखी हैं, तो उन आइटम्स को भी हम टेस्ट को फाइनलाइज करने से पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके अपने अपने अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू होते हैं, तब हम उन्हें स्टैंडर्डाइज करते हैं और तभी हम उन्हें अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें रिलायबिलिटी जो है वो डिफर करेगी, वो डिफर सिर्फ तब करेगी जब वो इंडिविजुअल की स्टेट डिफरेंट होगी। स्टेट मतलब या तो उसने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो हाई स्कोर्स आ सकते हैं, स्कोर्स डिफर कर सकते हैं, या फिर उसकी हेल्थ खराब हो गई तो स्कोर्स डिफर डाउन हो सकते हैं, बट टेस्ट हैज़ टू बी रिलायबल, इसलिए कहते हैं कि जो टेस्ट की क्वालिटी ही है ये कि वो रिलायबल ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. वो तो जो भी साइकोलॉजिस्ट जब भी जिस टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो वो ये सोच समझ के, जैसे हम लोग ने मैंने भी एक बार एक टेस्ट को बनाया था, तो टेस्ट को बनाने से पहले उसको पूरा स्टैंडर्डाइज किया जाता है, सो दैट जितनी भी बार मैं इंडिविजुअल्स पे उसको अप्लाई करूंगी तो वो कंसिस्टेंटली सिमिलर
रिजल्ट्स देगा
जैसे उसने पहले दिए थे, सही रिजल्ट्स. ये तो था रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट. दूसरा होता है वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट. वैलिडिटी टेस्ट का मतलब होता है कि वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज द डिग्री टू विच इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर. फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट वही मेजर कर रहा है जो वो मेजर करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं इंटेलिजेंस का टेस्ट लेने के लिए, तो वैलिडिटी टेस्ट की तभी होगी जब वो टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, ना कि जब वो टेस्ट
हाइट को मेजर
कर रहा है. वेरी गुड एग्जांपल, कि ना कि वो हाइट को मेजर कर रहा है. दैट मींस द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, तभी हम कहेंगे कि टेस्ट जो है
रिलायबल है,
वैलिड है.
वैलिड
यहाँ पे वैलिड है, रिलायबल कंसिस्टेंट सी इन दी स्कोर्स, उसको कहते हैं रिलायबिलिटी. वैलिडिटी मतलब जब आप जो मेजर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वही टेस्ट आपसे मेजर करवा रहा है. ठीक है. अ वैलिड टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी गिव्स अ मेजर ऑफ पर्सन्स पर्सनैलिटी एंड प्रिडिक्ट्स बिहेवियर इन सिचुएशंस वेयर दैट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज फाउंड इम्पॉर्टेंट. मतलब जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जैसे मैंने वैलिडिटी की बात करी, तो अगर मैंने कहा कि द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, चाहे वो पर्सनैलिटी हो चाहे वो इंटेलिजेंस हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सनैलिटी का टेस्ट लेते हैं तो पर्सनैलिटी का टेस्ट इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा, और उसके बेसिस पे ये बताएगा कि डिफरेंट सिचुएशंस पे या पर्टिकुलर सिचुएशंस पे कोई इंडिविजुअल किस तरह से एक्ट करेगा. दैट मींस टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर मींस दैट द टेस्ट इज अ वैलिड टेस्ट ऑफ इज अ वैलिड साइकोलॉजिकल टेस्ट. तीसरी हम लोगों ने बात करी थी, एक था रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट स्कोर्स, दूसरा था वैलिडिटी विच मीन्स दैट टेस्ट की इंटेंशन क्या है, और थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन. अब जो आपने मुझसे बात पूछी थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज वो टेस्ट कुछ मेजर कर रहा है स्कोर और कल कुछ और, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता क्योंकि हम टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं. अब किसी भी टूल को यूजफुल असेसमेंट देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस टूल को स्टैंडर्डाइज करें. अब व्हाट डज स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स? स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट टू ऑल पर्संस इन द सेम वे अंडर द सेम कंडीशंस. मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ये चीज़ को श्योर करती है, इंश्योर करती है कि जो भी आपका प्रोसीजर है किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में, एडमिनिस्टर मतलब जिस तरह से आप लोगों को उसे देते हैं, वो टेस्ट सभी लोगों को सेम कंडीशंस में सेम तरीके से दिया जाएगा. अब इसमें क्या आता है, ये भी इन्वॉल्व करता है कि जो नॉर्म्स हैं वो किस तरह से आप एस्टैब्लिश करते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स सो दैट एन इंडिविजुअल स्कोर्स कैन बी इंटरप्रेटेड. अब नॉर्म्स की मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. पहले नॉर्म्स की डेफिनेशन को इस तरह से समझ लीजिए कि नॉर्म्स इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ अ स्कोर ऑफ अ पर्सन विद दोज ऑफ अदर्स इन अ डिफाइंड ग्रुप. आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिविजुअल को आज मैंने टेस्ट किया है तो कभी भी मैं टेस्ट करूँ तो किसी भी एज में सेम आएगा. जी, जी, जी. मैंने कहा था कि उसका IQ लेवल सेम रहेगा. हम उसको उसकी एज के अकॉर्डिंगली आइटम
चेंज करेंगे,
डिफिकल्टी ऑफ आइटम्स चेंज हो जाएगा. वो होता है नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब ये है, अगर मैं 5 साल के बच्चे को 15 साल के बच्चे का टेस्ट देती हूँ तो दैट मीन्स वो नॉर्म्स नहीं है. मैं कंपैरिजन 5 साल का 5 साल के बच्चों से ही करूँगी. 5 साल के बच्चे के स्कोर को मैं 15 साल के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकती. तो मतलब नॉर्म्स का मतलब है, नॉर्म्स ये इन्वॉल्व करता है कि कंपैरिजन करोगे आप स्कोर किसी भी इंडिविजुअल का विद दोज ऑफ अदर्स इन अ डिफाइंड ग्रुप. मतलब 15 साल का 15 साल के साथ, 5 साल का 5 साल के साथ, 10 का 10 के साथ और 80 का 80 के साथ. आप किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हो, जिस एज ग्रुप में आप फॉल करोगे उसी एज ग्रुप के साथ आप कंपैरिजन करोगे. तो इस तरह के हमने नॉर्म्स डेवलप करे होते हैं. वो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक टेस्ट की एक बुकलेट होती है और उस बुकलेट के पीछे डिफाइंड नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स में ये लिखा होता है, एक चार्ट बना होता है, मतलब कुछ टेस्ट में एक चार्ट बना होता है और उसमें ये बताया जाता है कि अगर 5 साल का बच्चा इतनी आइटम्स पे इतना स्कोर कर रहा है तो उसका IQ यहाँ फॉल करता है और अगर 15 साल का बच्चा इतना स्कोर कर रहा है तो उसका IQ यहाँ फॉल करता है. मतलब हमने एज के भी नॉर्म्स बनाए होते हैं, मेल्स फीमेल्स एज सेक्स हर चीज़ के हमने नॉर्म, रिलीजन ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमें ये जो हमारा सोसाइटी है या जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है. तो वो एथनिसिटी के भी नॉर्म्स बने हैं कि आपको इस एथनिसिटी के लोगों को इसी एथनिसिटी से कंपेयर करना है. ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने लो स्कोर किया है आप किसी वेस्टर्न कल्चर, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहते,
बट ये चीज है कि आप एथनिसिटी के भी नॉर्म्स होते हैं कि ये तरह के लोग एक जैसा परफॉर्म करेंगे और इनका कंपैरिजन आप किसी और तरह के
लोगों से नहीं करेंगे.
तो दैट मींस हमने नॉर्म्स डेवलप करके रखे हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं. अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पहली बात तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये इंश्योर करती है यूनिफॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन दी प्रोसेसेस एंड कंडीशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये रिजल्ट्स को हमें इजी बनाती है इंटरप्रेट करने में. अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किए हैं वैरायटी ऑफ टेस्ट टू मेजर डिफरेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने मतलब साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए. जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में हम यूजुअली अचीवमेंट टेस्ट को अप्लाई करते हैं बच्चों पे कि उनका अचीवमेंट लेवल क्या रहेगा, जो मेजर करता है एक्चुअली में कि बच्चों ने क्या लर्न किया है अभी तक, उनका कितना अचीवमेंट है. साइकोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी. आपका क्या एबिलिटी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप नया कोर्स डिसाइड करने जाते हो या अपना करियर डिसाइड करने जाते हो तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो टेस्ट उनका एबिलिटी को मेजर करता है. और कई बार टेस्ट पर्सनैलिटी को भी मेजर करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कैसा है, किस तरह की जॉब आपको सूट करेगी या आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे. बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं. जो टेस्ट होता है, द टेस्ट ऑफ एबिलिटी इज टू टेल व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू. जैसे कि मैंने कहा कि एबिलिटी का टेस्ट बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं और उनका वो किस में बेस्ट कर सकते हैं. और टेस्ट मेजर करता है कैपेसिटी एज पोटेंशियल रादर देन अचीवमेंट. मतलब टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि वो आपकी अचीवमेंट को मेजर कर रहा है कि आपने कितना अचीवमेंट कर लिया है, वो एक्चुअली में ये मेजर कर रहा है कि आप में पोटेंशियल कितना है, आप कितनी कोई चीज़ को अचीव कर सकते हैं. टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड कम अंडर दिस कैटेगरी विच इज़ आपका पोटेंशियल करने के लिए. Aptitude refers to the ability of a person to learn a particular kind of skill required in a specific situation. Aptitude का मतलब generally ये होता है कि aptitude ये measure करता है कि कोई skill जो किसी particular situation में चाहिए उसमें individual कितना skilled है. मतलब for example कोई driving test के लिए जाता है तो उसमें हम aptitude measure करते हैं कि कोई कितना अच्छी driving कर सकता है. कई बार जैसे एक वो पायलट के लिए टेस्ट होते हैं या किसी और के लिए टेस्ट होते हैं तो वो क्या मेजर करते हैं कि आपका क्या पुटे आपकी क्या एप्टीट्यूड है, कैन यू बी अ ड्राइवर और अ पायलट और समथिंग एल्स. मतलब क्या एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड टीचिंग का भी हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड
किसी प्रोफेशन के लिए एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है.
तो वही है कि जो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये यही मेजर करते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और आपका पोटेंशियल किस में अच्छा, आप किस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. एडमिशन टेस्ट जो IIT या PMT के होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही होते हैं. वो इसीलिए किए जाते हैं कि आपकी टेक्निकलिटी या आपका कितना नॉलेज है कि आप आगे प्रोफेशंस में कितने अच्छे से कर पाएंगे.
ठीक है.
जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ये तो था कि हम किस तरह से नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है. जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो देर आर वेरी फ्यू थिंग्स विच आर सो ऑब्वियस एंड सो एल्यूसिव एज इंटेलिजेंस. जो डिफरेंसेस होते हैं इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट पे वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल हम कैसे बताते हैं कि कोई somebody is more intelligent and somebody is less intelligent and not that intelligent than the first individual. जैसे कि हम लोग वी टेक द मार्क्स इन स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th ग्रेड स्टूडेंट्स. इट विल यील्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोस्ट पीपल विल शो मॉडरेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड वेरी फ्यू आर ऑन द एक्सट्रीम्स शोइंग एक्सट्रीमली हाई विच इज एक्सेलेंट और एक्सट्रीमली लो दैट इज वेरी पुअर और लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब अगर हमको ये डिफाइन करना हो कि किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं डिफर करते हैं इंटेलिजेंस पे, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स का कोई भी टेस्ट लेंगे तो आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर मॉडरेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में फॉल करेंगे और बहुत कम जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सट्रीम कैटेगरीज में फॉल करेंगे. एक्सट्रीम कैटेगरीज जो बहुत अच्छी वेरी हाई इंटेलिजेंट भी हो सकती हैं या हाई एक्सीलेंटली गुड भी हो सकती हैं और जो लो और वेरी पुअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी हो सकता है वो कुछ फ्यू कैटेगरीज ही होंगी, दैट इज़ जो एक्सट्रीम एंड्स पे आएंगी. लेकिन एवरेज लोग जो होते हैं वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शो करेंगे. अब ये क्या है कि ये ट्रू है इंटेलिजेंस के लिए भी. मैंने तो परफॉर्मेंस की बात करी कि 10th के ग्रेड का आप टेस्ट लेते हैं तो कैसा होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर इंटेलिजेंस ऑल्सो. मतलब बहुत कुछ लोग जो होते हैं वो एक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में फॉल करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल्स पे फॉर्म करते हैं. अब उसको पढ़ने के लिए अगर आप अपने लेसन ये जो लेसन नंबर 15 है इस पे जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को देखेंगे तो वहाँ पे हमने फिगर 15.1 में एक इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दी है. इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है. इसे वैसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे हम किस तरह से इंडिविजुअल्स को डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस विच इज़ द IQ हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट वेरीज इन डिग्री एंड वेरी फ्यू पीपल हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. दैट मीन्स जो मोस्टली पीपल हैं वो इसमें जो सेंटर वाला रेंज है उसमें फॉल कर रहे हैं और बहुत कुछ कम लोग हैं जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहे हैं. जो कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा दिखाते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस दिखाते हैं. अब इसमें कैसा आता है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिफाइन और मेजर इंटेलिजेंस तो ये एक बहुत नॉटी सा प्रॉब्लम हो जाता है. अब कैसा है कि बिकॉज इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, हम जैसे हाइट को मेजर कर सकते हैं उस तरह से हम इंटेलिजेंस को देख के तो मेजर नहीं कर सकते टच करके. अब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें असेस करना पड़ता है बाय आर ओन थियोरेटिकल व्यू पॉइंट, जो हमने व्यू पॉइंट अपना बना के रखा है. क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी डिफाइन किया था कि क्योंकि जैसे आप कोई साइंटिफिक तरीका लेते हैं जो नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड है तो उसमें जैसे हाइट मेजर करते हैं वेट मेजर्स करते हैं तो वो आपको सामने दिख जाता है. लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं एंड दोज टेक्निक्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग और असेसिंग द रिजल्ट्स. अब क्या होता है कि वी कैन नॉट अप्रोच एंड हैव एक्सेस टू इट इंडिपेंडेंट ऑफ आर थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स. जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो हमें हमेशा एक थियोरेटिकल बेसिस जो हमने थ्योरी बनाई है इंटेलिजेंस की कि ये वाले इंडिविजुअल्स इस तरह से फॉल करेंगे, ये वाले इंडिविजुअल्स इस तरह से आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को उस थ्योरी के बेसिस पे ही हम लोगों को अपने रिजल्ट्स को डिफाइन करना पड़ता है. At present, psychologists have many such models which provide diverse views of intelligence. मतलब इस टाइम पे जैसे मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं. हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है. जो डाइवर्सिटी है इंटेलिजेंस की वो इतना ज़्यादा परप्लेक्सिंग है कि वॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स हैव टू कम टू डिफाइन इट, कि हम ये हमें बताना पड़ रहा है कि इंटेलिजेंस टेस्ट एक्चुअली में मेजर क्या कर रहा है. ये कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से भी है कि जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमने डेवलप किए थे बिफोर डिफाइनिंग व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, मतलब हमने क्या हम टेस्ट को हम क्या चीज़ इंटेलिजेंस क्या है ये डिफाइन करने से पहले ही हम काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो डिफाइन कर बना चुके थे। इस कनेक्शन में अगर मैं बात करूं कि किस किस तरह के टेस्ट बने हैं, तो सबसे पहले जो था, जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट पब्लिश हुआ था वो बायनेट साइमन ने पब्लिश किया था इन 1905 व्हेन द फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जब फ्रेंच मिनिस्टर था उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि किस तरह से आप मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को टीच कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो दो साइकोलॉजिस्ट थे बायनेट और साइमन, इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट समझा कि इंटेलिजेंस को मेजर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब इनका लेवल क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, एक थ्योरी बनाना ज़रूरी है। अब उन्होंने क्या किया कि चिल्ड्रन को टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट एंड कंपेयर देयर स्कोर्स विद द एवरेज स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल चिल्ड्रन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम टेस्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो वो एक पूरा थ्योरी है कि हम किस किस तरह से चलते हैं। तो शुरू में जब बायनेट और साइमन ने ये टेस्ट बनाया तो उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन थे उनका एक टेस्ट ले लिया और उनके स्कोर्स ले लिए, और फिर जो मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल चिल्ड्रन थे उनका टेस्ट ले लिया, और फिर दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो मेंटली स्पेशल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड दी नॉर्मल चिल्ड्रन, उन दोनों के स्कोर्स को कंपेयर किया जो और फिर उन्होंने पाया कि जिन लोगों का जो जो उनका मेंटल एज था वो 2 degrees लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज था, उनको उन्होंने रिटार्डेड माना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेंटल एज को सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हम IQ को टेस्ट कैसे करते हैं। IQ को टेस्ट करने का तरीका होता है MA/CA × 100। अब मेंटल एज का मतलब होता है कि अगर आपका क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब अगर आप 15 साल के हैं तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है 15 years, और आपका मेंटल एज जो है वो कम से कम 15 years आना चाहिए। अगर आपका मेंटल एज जो है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल कम आता है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, तो आपको रिटार्डेड कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। ये जो एंड दिस टेक्निक हैज़ रिजल्टेड इन, इससे बहुत सारे हमारे थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स भी निकले। बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स प्रेजेंटिंग सम ऑफ दीज व्यू पॉइंट्स, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वॉट आर दी ब्रॉड क्लासेस ऑफ एबिलिटीज़। जब हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस मतलब हाउ डू यू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस या फिर चेंजिंग डिमांड्स अराउंड यू, किस तरह से आप लर्न करते हैं या प्रॉफिट करते हैं ऑप्टिमली फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस या ट्रेनिंग्स जो आपको मिलती है, और किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एबिलिटी जो है वो आपका रेफर करता है टू द करंटली अवेलेबल पावर टू परफॉर्म समथिंग। तो दैट मीन्स, इसमें मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि IQ क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, उसको हम बनाने के लिए हमने सबसे पहले डिफरेंट टेस्ट आए, टेस्ट किस तरह से आए कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था कि इंटेलिजेंस मेजर करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंटेलिजेंस क्या है, ये हमें डिफाइन करना है। जब बायनेट और साइमन ने सबसे पहला टेस्ट पब्लिश किया, उन्होंने ये टेस्ट इसलिए पब्लिश किया था क्योंकि उन्हें कहा गया था कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं टूवर्ड्स इन असिस्टिंग देम और उनकी स्टडीज़ के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक अपना टेस्ट बनाया था, और टेस्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन थे उनके स्कोर्स को उन्होंने नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ कंपेयर किया था, और ये पाया था कि जो भी बच्चे जिनका मेंटल एज अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल कम होगी उनको उन्होंने रिटार्डेड घोषित किया था। ये तो था कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। अब जैसे फैक्टोरियल व्यू पॉइंट की हम बात करते हैं, तो फैक्टर्स का मतलब ये है कि कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को बनाते हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में। अब कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्पोजिशन है इंटेलिजेंस की, चाहे वो वेदर इट इज़ यूनिटरी और मल्टी कॉम्पोनेंशियल, हैज़ बीन अ मैटर ऑफ क्यूरोसिटी। मतलब आप एक ही वजह से इंटेलिजेंट है या बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स
हैं जो आपको इंटेलिजेंट साबित करते हैं,
ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी का विषय रहा है. तो कोरिलेशनल टेक्निक से, जिसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, रिसर्चर्स ने ट्राई किया है टू अनकवर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, की मतलब एक्चुअली में इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक एस्पेक्ट से बनी है या वो बहुत सारे एस्पेक्ट से बनी है. इंटेलिजेंस को ऑल्दो हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, जैसे मैंने कहा था कि थ्योरीज होती हैं और उन थ्योरीज का हमें सहारा लेना पड़ता है जब भी हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं. हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग तरीके से इंटेलिजेंस की एक थ्योरी बनाई है कि इंटेलिजेंस क्या है. अगर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ फैक्टोरियल व्यू पॉइंट की, कि किस तरह से एक हमने जो फैक्टर एनालिसिस करके जो एक टेक्निक होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसके बेसिस पे हमने इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को समझने की किस तरह से कोशिश की है. तो स्पीयरमैन ने सबसे पहले प्रपोज किया था ये फैक्टर एनालिसिस, जिसमें उसने कहा था दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जी फैक्टर जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं जो कि सब लोगों में पाया जाता है, और एक होता है एस फैक्टर जो कुछ ही मतलब स्पेशल फैक्टर्स होते हैं. जनरल फैक्टर मोस्टली सब इंडिविजुअल्स में सेम होते हैं, और जो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स, वो इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं. तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंगली जो इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर है वो जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब एस फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा है थर्स्टन का व्यू पॉइंट, वो भी मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताता है. अब जैसे स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात की थी, थर्स्टन ने बात करी थी सेवन फैक्टर्स की. उसने कहा वो सेवन फैक्टर्स कौन से हैं जो आपकी आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं. उसने कहा आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कैसा है, किस तरह से आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं चीज़ों को, वर्ड फ्लुएंसी कैसी है, आपका नंबर कैसा मतलब नंबर्स के साथ आपकी कितनी फैमिलैरिटी है, कितने हाउ गुड यू आर एट मैथ्स या नंबर्स, ठीक है, आपकी स्पेशल जो एबिलिटी है वो किस तरह की है, आप चीज़ों को अपने अराउंड कैसे समझ पाते हैं एनवायरनमेंट में, एसोसिएटिव मेमोरी आपकी कैसी है मतलब आप किस तरह से याद रखने के लिए आसपास के सराउंडिंग में चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं, और आपकी परसेप्चुअल स्पीड और इंडक्शन विच इज़ आपका जनरल रीजनिंग, कैसे आप समझते कैसे हैं और रीजन कैसे करते हैं चीज़ों को. तो ये कुछ सात फैक्टर्स थे जो थर्स्टन ने बताए थे, और उसने डेवलप किया था टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल स्पीड एंड इंडक्शन, या फिर जिसे हम जनरल रीजनिंग भी कहते हैं. ही डेवलप्ड अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टू मेजर दीज फैक्टर्स. मतलब कहने का मतलब ये है, स्पीयरमैन ने दो फैक्टर्स दिए थे विच इज अ जनरल फैक्टर जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर. जो थर्स्टन था उसने सात फैक्टर दिए थे कि इन सेवन फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी की इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तो था हमारा फैक्टोरियल व्यू पॉइंट. अब इसी के साथ एक और व्यू पॉइंट है जो इंटेलिजेंस क्या है उसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस आया. उसमें गिलफर्ड ने अपना स्ट्रक्चर, वो तो था फैक्टोरियल व्यू पॉइंट. अब स्ट्रक्चर आप इंटेलेक्ट का कैसे समझते हैं, तो गिलफर्ड एक अनदर इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया, और उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वो लेके आए, उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर है. इंटेलिजेंस में एक ऑपरेशंस आते हैं, एक कंटेंट आता है और एक प्रोडक्ट आता है. हर एक का अपना अपना तरीका है डिफाइन करने का. तो गिलफर्ड ने कहा इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. कहने का मतलब है, ऑपरेशन का मतलब कि आपको किसी चीज़ पे ऑपरेट करना है. मतलब क्या चीज़ें आप ऑपरेशंस क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किस तरह से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, आप अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, रीजनिंग कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी कैसे करते हैं मतलब थिंकिंग आप कैसे करते हैं, कौन से ऑपरेशंस आप लगाते हैं, ये इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है किस कंटेंट पे आप वो ऑपरेशन लगा रहे हैं. वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, विजुअल कंटेंट भी हो सकता है, ऑडिटरी कंटेंट भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, सिमेंटिक भी हो सकता है. और तीसरा है कि इससे कुछ प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं. मतलब जो आपने ऑपरेशंस लगाए, जो तरीका आपने लगाया वो किस चीज़ पे लगाया और उससे अब क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है. तो प्रोडक्ट किस टर्म्स में आते हैं, कुछ यूनिट्स में आ सकते हैं या क्लासेस में आ सकते हैं, रिलेशंस में, या आप किस चीज़ों से कैसे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो यूज़ करता है ऑपरेशंस कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स को टू डिफाइन इंटेलिजेंस. तो ये क्लियर है फैक्टोरियल व्यू पॉइंट से ऑफ इंटेलिजेंस से इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. इंटेलिजेंस हमको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आप में है. ट्रेड्स मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टोरियल व्यू पॉइंट. बट एक आता है इंटेलिजेंस एज अ प्रोसेस. एक तो हो गया कि हमने अलग अलग फैक्टर्स को लेके इंटेलिजेंस को डिफाइन कर लिया. अब हमको इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है कि एक अलग व्यू पॉइंट आ गया फैक्टर्स से. फैक्टर्स तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको लेके डिफाइन कर रहा था इंटेलिजेंस को. वो एक फैक्टोरियल व्यू पॉइंट जो आगे स्पेयरमैन का, थर्स्टन का और गिलफर्ड.
ठीक है, जो फैक्ट्स आपने देखे उसके आधार पर, मतलब सिंपल
जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उसके आधार
सिंपल मैथमेटिकल तरीका कि जो जो हमें मिला वो
मैथमेटिकल तरीका. अब ये इंटेलिजेंस एज अ प्रोसेस. अब हम अब जो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे वो आए और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को हम इस फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पे नहीं समझ सकते. इसको हमें इस तरह से समझना है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हो, कि आप कैसे चीज़ों को समझते हो और फिर उससे किसी कंक्लूजन पे आते हो, उस पर काम करते हो. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसे कहते हैं ट्राईआर्किक थ्योरी. उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया साइकोमेट्रिक अप्रोच और दी फैक्टोरियल अप्रोच. और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को हम तीन एस्पेक्ट्स पे डिफाइन कर सकते हैं. वो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं आपका कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल. मतलब कॉम्पोनेंशियल वो सब एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है जिसको हम इम्प्लॉय करते हैं किसी भी पर्सन पे व्हेन व्हाइल टेकिंग अ टेस्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू द आइटम्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट. कि मतलब किस कॉम्पोनेंट पे इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा है उसके बेसिस पे. और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है एक मेटा कॉम्पोनेंट्स, या उन्हें हम हायर ऑर्डर कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स भी कहते हैं, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स और एक्विजिशन कॉम्पोनेंट्स एंड ट्रांसफर कॉम्पोनेंट्स. जो सेकेंड एस्पेक्ट है ट्राईआर्किक थ्योरी में, पहला तो हो गया कॉम्पोनेंशियल, दूसरा है एक्सपीरियंशियल. हम जो सेकेंड एस्पेक्ट है ये रेफर करता है आपके मेंटल वर्ल्ड को एंड योर आउटर और एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है और उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं. ये जो एक्चुअली क्या होता है कि जितना जितना हमें एक्सपीरियंस आता जाता है वो एक्सपीरियंस हमारी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा ऐड करता जाता है, हमारे इंटेलिजेंस को ज़्यादा बढ़ाता जाता है. और इन रियलिटी जो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है वो उसकी एक्सपीरियंसेस से ही शेप होती है. और जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट आता है वो होता है कंटेक्चुअल एस्पेक्ट. कंटेक्चुअल एस्पेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अप्लाई करता है. तो ये आता है द इंडिविजुअल्स शेयर देयर एनवायरनमेंट, अडेप्ट टू देम एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब ऑल एंड ऑल ट्राईआर्किक थ्योरी में हमने तीन चीज़ों की बात करी कि इंटेलिजेंस को हमने फैक्टर्स के बेसिस पे नहीं समझना है जैसे हम पीछे समझ रहे थे. इंटेलिजेंस को हमने इस तरह से समझना है कि हम अपने अराउंड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं. उसको प्रोसेस करने के लिए तीन तरीके इन्होंने बताए. एक होता है आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कि किन किन चीज़ों पर आपने कॉम्पोनेंट्स पर आपने काम करना है. हायर मेंटल ऑर्डर कॉम्पोनेंट्स आ गए कि किस किस तरह से आपने काम करना है. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप कैसे चीज़ों को समझते हो, प्रॉब्लम्स को समझते हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो. और आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझते हो और उन्हें सॉल्व करने, कॉन्टेक्स्ट मतलब किस तरह के सिचुएशन में, जैसे कि आप किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को शेयर करते हो. आप अपने आप आज इस सिचुएशन में हो, कल किसी और सिचुएशन में हो, तो आज की सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हो, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. और किसी और जगह पे जाके आप उस सिचुएशन
कैसे डील करते हो और आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहता है टोटल,
अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग एंड अडैप्टिंग टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस. और एक और आया था इसी में जो एज अ प्रोसेस अगर हम समझेंगे तो वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. और ये दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है बट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती है. और उन्होंने डिफाइन किया था आठ तरह की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं. वो मैं बताती हूँ कौन कौन सी होती है. एक आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल एबिलिटी, इंट्रापर्सनल एबिलिटी एंड योर नेचुरल एबिलिटी. मतलब ये आठ एबिलिटीज इंडिविजुअल में बताती है
कि किस तरह का क्या है उसका स्टैंडर्ड है.
किसी की म्यूजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है. किसी की लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी हो सकती है. किसी की बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए जिम्नास्टिक्स हुए या फिर डांसर्स हुए, तो हर एक इंडिविजुअल में अपनी अलग अलग तरह की एबिलिटीज हैं. किसी में लोगों से बात करने की जो एबिलिटी है वो किस तरह से आप इंटरपर्सनल एबिलिटी,
हाँ एग्जैक्टली,
किसी में इंट्रापर्सनल एबिलिटी की आप अपने आप को कैसे समझते,
बहुत समझते हैं, हाँ, जी,
तो
जी,
ये है अलग अलग तरह से हम कितने अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स में किस किस तरह की इंटेलिजेंस होती है. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल में पाई जाती है, तो वो हॉवर्ड गार्डनर ने बताया था, जो मैंने आपको 8 एबिलिटीज बता दी. अब जब हम इन पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है कि इंटेलिजेंस इन द नॉन कॉग्निटिव डोमेन. ये तो हो गया कि हम सोचने समझने से कैसे बात करते हैं, नॉन कॉग्निटिव डोमेन में हम इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं. अब वो आता है कि अगर हम ऐसे कहें कि अपनी जो भी प्रोसीडिंग एनालिसिस है, मेजर कंसर्न्स ऑफ स्टडी इन इंटेलिजेंस हैज बीन द रैशनल एंड द कॉग्निटिव डोमेन. मतलब जो हमने अभी तक किया वो है रैशनल, जिसको हम लॉजिक देके या फिर सोच समझ के. कॉग्निटिव हुआ जो हम अभी बात कर रहे थे कि एज अ प्रोसेस हम कैसे इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे. लेकिन अभी रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि बहुत अलग एस्पेक्ट्स भी इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के पाए गए हैं. उनमें से दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला है विजडम, दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस. अगर मैं विजडम की बात करूँ कि विजडम के बेसिस पे आप इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो विजडम कंप्राइज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल, सोशल एंड पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स. मतलब विजडम उस इंसान में है जिसमें इंटरपर्सनल एबिलिटी भी अच्छी तरह से एग्जिस्ट करती है, सोशल एबिलिटी भी है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी है और कॉग्निटिव एबिलिटी भी है. और ये किस तरह से कोई इंडिविजुअल वो अचीव करता है, बाय सक्सेसफुली नेगोशिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेंट एंड प्री ऑक्यूपेशन विद वन सेल्फ. अपने आप को समझ के और अपने आसपास की सिचुएशन को समझ के बुद्धि से जो अपने जीवन शैली को जीता है, दैट इज अ विजडम. ऐसे में सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज. दूसरा है आपका सोशल इंटेलिजेंस. सोशल इंटेलिजेंस क्या है, वो काफ़ी अभी काफ़ी रीसेंट टाइम्स में ये सोशल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर हो रही है. क्यों पॉपुलर हो रही है, ये एक्चुअली में डिफाइन करता है कि आप किस तरह से डेली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. डेली लाइफ में मतलब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आप अपने बॉस के साथ कैसे डील करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ.
मतलब ये एक सिंपल सा वो इंटेलिजेंस है जो आपके रोजमर्रा के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. इसलिए ये जैसे जैसे साइकोलॉजी को लोग समझने लगे हैं, हाँ, ये तो ज्यादा चलन में आ गया है.
ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस. तो ये तो थी कि किस किस तरह से हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट इसमें रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि डिफाइन तो हमने इंटेलिजेंस को कर दिया, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं. तो बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं. एक है स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट. ये टेस्ट जो था वो बाइनेट साइमन ने, हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने ये टेस्ट को फ्रेंच स्कूल चिल्ड्रन पे अप्लाई किया था और उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था टर्मन के द्वारा, जो कि उन्हीं का एसोसिएट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. और उसके बाद इस टेस्ट के बहुत सारे वर्जन्स आए. अभी जो यहाँ पे है वो SB4 स्केल की हम बात करते हैं कि उस वर्जन को हम यूज़ करते हैं. टेस्ट को रिवाइज करने का मतलब होता है कि बाइनेट साइमन ने एक टेस्ट बना दिया था और हमने बाद में उसमें कुछ रिविजन्स कर दिया, कुछ चीज़ें ऐड कर दी, हाँ. कुछ डिलीट कर दी. तो उसमें उन्होंने IQ का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है इस टेस्ट में, जो मैं पहले डिफाइन कर सक चुकी हूँ कि IQ इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. फिर है वैश्लर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, और वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल भी बहुत बार रिवाइज किया गया है और ये कवर करता है एज स्पैन ऑफ 16 टू 14. मतलब इस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस से हम 16 साल से लेके 74 साल तक के इंडिविजुअल्स को हम स्टडी कर सकते हैं. और इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस सब टेस्ट आते हैं स्केल के अंदर. कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, डिजिट स्पैन टेस्ट होते हैं. तो इस तरह से ये टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करता है. एक आता है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वो भी 3 तरह की होती है. एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होती है, वो 80 साल के लोगों के लिए होती है. कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होती है, जो स्पेशल बच्चों के लिए होती है. और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होती है. और ड्रॉ मैन टेस्ट भी होता है, जिसमें बच्चों को कहा जाता है एक इंडिविजुअल को ड्रॉ करो और उसको समझो. तो इस तरह के डिफरेंट टेस्ट हैं. कंक्लूजन में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि टेस्ट जो है उनके, जितने भी हम इंडिविजुअल ये इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं. क्योंकि साइकोलॉजी में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, रुचि भी बढ़ रही है और अवेयरनेस भी बढ़ रही है. तो इंटेलिजेंस टेस्ट के वेरियस यूजेस होते हैं. एक पर्सनल सिलेक्शन में, जब भी स्टाफ का सिलेक्शन करना होता है ऑफिस में, तो भी इन टेस्ट को अप्लाई किया जाता है. जब आप किसी मेंटल हैंडीकैप को, आपको मेंटल इलनेस है या मेंटल रिटार्डेडनेस है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तब भी इन इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो मैं आपको कह रही थी रिटार्डेडनेस को समझने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ किया जाता है. और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि आप क्या, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं जो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में करियर में हेल्प करेगा. और डिफरेंसेस को समझने के लिए हमने ये जाना है कि लोगों के एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है उनकी इंटेलिजेंस, और जीन्स भी इफेक्ट करते हैं.